آپ ہیں ایس بی ایس ہندی کے ساتھ اور خبروں کے لیے جائیں sbs.com.au/hindi پر۔
ہیں آج کے مکھیہ سماچار وشالی جین کے ساتھ۔ ایسٹ کیئر کرمچاریوں کے ایک سے ادھک فیسلٹی میں کام کرنے کی چھوٹ پر لیبر نے جتائی ناراضگی۔ بھارت میں 11 اپریل کے بعد آئے سب سے کم کورونا معاملے۔ اور ٹینس میں میڈیا سے سنواد نہ کرنے پر ناومی اوساکا پڑی مشکل میں۔ اور اب خبریں وسطار سے۔ ایسٹ کیئر کرمچاریوں کو کئی فیسلٹیز میں ایک ساتھ کام کرنے کی رعایت دینے پر لیبر نے فیڈرل سرکار کی آلوچنا کی ہے۔ وکٹوریا نے آج سوموار 31 مئی کو 11 نئے سامودائک معاملے درج کیے ہیں، جس سے آؤٹ بریک سے جڑے سنکرمنوں کی کل سنکھیا 51 ہو گئی ہے اور پراتھمک نکٹ سمپرک کی سنکھیا 4,200 ہو گئی ہے۔ ایک دوسرے ایسٹ کیئر کرمچاری جنہوں نے کئی ایسٹ کیئر سویدھاؤں میں کام کیا تھا کہ کورونا پازیٹیو آنے کے بعد یہ چنتائیں جتائی جا رہی ہیں۔ لیبر کے سواستھیہ منتری مارک پٹلر کا کہنا ہے کہ سرکار کو اپنی ذمہ داری نبھانے کی ضرورت ہے۔
We've seen an aged care worker who worked, as I understand it, at the R-Care facility at Maidstone, working in another facility as well, potentially exposing residents at that second facility. So I think the government needs to explain why they thought the risk had receded to such a degree that it was able to lift the ban that was in place last year.
विपक्ष के ट्रेजरी प्रवक्ता जिम चार्मर्स ने फेडरल सरकार से वर्तमान कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान विक्टोरियन कामगारों और व्यवसायों को वित्तीय सहायता प्रदान करने का आह्वान किया है। उन्होंने आर्थिक सहायता को वापस खींचने की जल्दबाजी और वैक्सीन रोल आउट और संगरोध जिम्मेदारी में धीमी गति के लिए सरकार की आलोचना की है। श्री चार्मर्स ने 9 नेटवर्क से कहा कि विक्टोरियन सरकार के पैकेजों में फेडरल सरकार का बराबर का योगदान होना चाहिए।
We've said for some time that the way that JobKeeper is designed means that you could have extended it for the businesses that still genuinely need it. There's all of this money spraying around for companies that didn't need it. If they hadn't have done that, there'd be more room to support those businesses and workers that genuinely do. If there's a better idea, if Josh Frydenberg or Scott Morrison has a better idea, let's hear it. But right now, they're leaving Victorians hanging. We do want to work together, but let's get the federal opposition, the federal government and the state government in Victoria on the same page.
विक्टोरियन सरकार ने राज्य के चौथे लॉकडाउन से प्रभावित लगभग 90,000 व्यवसायों के लिए $250 मिलियन की सहायता पैकेज की घोषणा की है। फेडरल कोषाध्यक्ष जॉश फ्राइडनबर्ग ने विक्टोरिया की स्थिति की तुलना वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया और क्वींसलैंड में लगे हाल में छोटे लॉकडाउन से की है, जिसमें कहा गया कि उन दोनों राज्यों में से किसी को भी और समर्थन की आवश्यकता नहीं थी। उन्होंने कहा कि $1,500 की पैंडेमिक लीव डिजास्टर पेमेंट अभी भी नेशनल हेल्थ इमरजेंसी क्राइसिस पेमेंट के रूप में उपलब्ध है। न्यू साउथ वेल्स की प्रीमियर ग्लैडिस बर्जिकलियन का कहना है कि विक्टोरिया के साथ सीमा वहां विकसित हो रहे कोविड-19 संकट के बावजूद खुली रहेगी। प्रीमियर का कहना है कि विक्टोरिया में स्थिति चिंताजनक है और निवासियों को वहां यात्रा ना करने की भी चेतावनी दी गई है।
My heart goes out for the people of Victoria. They've been down this path before, and I can't imagine what it would be like having to go through so many instances when your life is so massively disrupted. I mean, that's what's happening around other parts of the world, and it doesn't take much for the most vulnerable to be impacted.
साउथ ऑस्ट्रेलिया की मुख्य जन स्वास्थ्य अधिकारी निकोला स्पेरियर का कहना है कि विक्टोरिया से राज्य में प्रवेश करने वाले 28,000 लोगों ने आधिकारिक टेक्स्ट संदेश सर्वे का जवाब नहीं दिया है कि वे विक्टोरिया में कहाँ थे। उनका कहना है कि वे निराश हैं कि जहाँ विक्टोरिया में सप्ताहांत में 40,000 से अधिक कोरोना परीक्षण किए गए, वहीं साउथ ऑस्ट्रेलिया में केवल 4,000 परीक्षण ही हो पाए। सुश्री स्पेरियर का कहना है कि यह संभव है कि साउथ ऑस्ट्रेलिया में कोविड-19 का सामुदायिक फैलाव हो रहा हो और इसीलिए वे लोगों को लापरवाही ना करने की चेतावनी भी दे रही हैं। न्यू साउथ वेल्स लेबर पार्टी का एक नया नेता चुनने की तैयारी जारी है। पूर्व एनएसडब्ल्यू विपक्षी नेता माइकल डेली ने कहा कि वे औपचारिक रूप से फिर से पार्टी के नेता बनने के लिए नामांकन करेंगे। संभावना है कि एनएसडब्ल्यू लेबर के पूर्व परिवहन प्रवक्ता क्रिस मिंस के साथ उनका आमने सामने का मुकाबला हो। श्री मिंस ने अभी तक औपचारिक रूप से अपनी उम्मीदवारी की घोषणा नहीं की है, हालांकि उन्होंने पहले भी नेतृत्व पद पाने के दो असफल प्रयास किए हैं। ये फेरबदल सुश्री जोड़ी मेके के पिछले हफ्ते विपक्ष नेता के पद से इस्तीफा देने के बाद हुआ। और अब अंतर्राष्ट्रीय खबरें। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्रियों ने प्रशांत क्षेत्र के लिए यात्रा विकल्पों का विस्तार करने की पहल पर चर्चा की है। प्रधानमंत्री जेसिंडा आर्डन और प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने जलवायु परिवर्तन, व्यापार और कोविड 19 महामारी पर भी चर्चा की। ट्रांस तस्मान संगरोध मुक्त यात्रा क्षेत्र के माध्यम से प्रशांत पड़ोसियों के लिए यात्रा विकल्पों का विस्तार किया जाएगा। श्री मॉरिसन का कहना है कि दोनों देश इस क्षेत्र में कोविड 19 वैक्सीन को रोल आउट करने की अपनी प्रतिज्ञा को जारी रखे हुए हैं।
We've committed further to the work we're doing in the Pacific to provide not only the vaccines in our own countries, but of course to support the vaccination program, whether it's in Fiji or whether it's in Tonga or many other places. We are covering the challenge that exists there.
और अब खबरें भारत से। भारत के सबसे सघन राज्य उत्तर प्रदेश ने कोरोना कर्फ्यू को लेकर नई गाइडलाइंस जारी की हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कहना है कि 600 से कम एक्टिव मामलों वाले जिलों में अब प्रतिबंधों में ढील दी जाएगी।
हमारे लिए व्यक्ति का जीवन भी महत्वपूर्ण है और उसकी जीविका भी महत्वपूर्ण है। इन दोनों में संतुलन बनाए रखते हुए हमें आगे बढ़ना होगा और जीवन और जीविका को बचाने के लिए किए जाने वाले प्रयास में सरकार ने आज कुछ और निर्णय किए। खासतौर पर जिन जनपदों में अभी भी एक्टिव केस 600 से ज्यादा है, उन जनपदों में अभी कोरोना कर्फ्यू हम लागू रखेंगे। अगले एक सप्ताह के लिए इसको लागू रखा है, लेकिन अगर वहाँ इस दौरान 600 से कम केस होते हैं तो वहाँ स्वतः ही कोरोना कर्फ्यू समाप्त होगा। और जो कोरोना कर्फ्यू में ढील दी गई है कि वहाँ पे सुबह 7 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक कुछ शर्तों के साथ ढील दी जाएगी।
भारत में कोरोना वायरस की दूसरी लहर कमजोर पड़ती दिख रही है। रोजाना दर्ज होने वाले मामले जो पीक के दौरान 4 लाख के ऊपर पहुंच गए थे, वो अब 2 लाख के नीचे आ गए हैं। वहीं 31 मई 2021 यानी आज सामने आए आंकड़ों में मौतों की संख्या में भी गिरावट देखी गई है। सोमवार की सुबह तक देश में पिछले 24 घंटों में कोविड 19 के 1,52,734 नए मामले दर्ज हुए हैं और इस दौरान 3,128 की मौत भी हुई है। भारत में पॉजिटिविटी रेट लगातार 10 दिनों से 10% के नीचे बना हुआ है। 11 अप्रैल के बाद ये दैनिक मामलों की अब तक की सबसे कम संख्या है। और अब डॉलर का हाल। आज यानी सोमवार को ये खबर लिखे जाने तक एक ऑस्ट्रेलियन डॉलर की भारतीय रुपयों में कीमत 55 रुपये 79 पैसे और अमरीकी डॉलर की तुलना में एक ऑस्ट्रेलियन डॉलर की कीमत 77 सेंट्स थी। और अब खबरें खेल के मैदान से। विश्व नंबर 2 नाओमी ओसाका पर फ्रेंच ओपन के पहले दौर में पेट्रिसिया मारियाटिक के खिलाफ जीतने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में शिरकत ना करने के लिए जुर्माना लगाया गया है। ओसाका ने पहले घोषणा की थी कि वे ओपन के दौरान अपने किसी भी अनुबंधित अनिवार्य मीडिया दायित्वों को पूरा नहीं करेंगी। हालांकि इसके कड़े दुष्परिणाम, जिसमें डिफॉल्ट भी शामिल है, के बारे में उन्हें चेतावनी दी गई है। कोरोना प्रतिबंधों के कारण टूर्नामेंट के पहले 10 दिनों के लिए प्रत्येक दिन केवल 5,400 आगंतुकों को ही आयोजन स्थल पर प्रवेश करने की अनुमति होगी। टूर्नामेंट की लाइन में खड़ी पहली टेनिस प्रशंसक बैप्टिस्ट टेसन का कहना है कि ये एक असाधारण घटना होगी।
I've been waiting for an hour. Roland Garros, for me as a tennis fan, it's a big deal. And to be able to come back after 2 years, because the last time I was here was in 2019, because in 2020 we couldn't get in. So it's something really special. Even with the health restrictions, we'll be able to enjoy matches, see players. So it's still quite an exceptional event.
और अब अंत में डालते हैं एक नज़र कल यानी मंगलवार को देश के प्रमुख शहरों के मौसम के हाल पर। पर्थ में कल बादल छाए रहने की संभावना है। यहाँ अधिकतम तापमान 19 डिग्री जबकि न्यूनतम 7 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। एडिलेड में भी कल बदली छाई रहेगी। यहाँ अधिकतम तापमान 20 डिग्री जबकि न्यूनतम 11 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। मेलबर्न में कल बादलों की आवाजाही लगी रहेगी। यहाँ अधिकतम तापमान 17 डिग्री जबकि न्यूनतम 7 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। देश की राजधानी कैनबरा में सुबह कड़ाके की ठंड के बाद दिन भर बदली छाई रहेगी। यहाँ का अधिकतम तापमान 14 डिग्री जबकि न्यूनतम -3 डिग्री रह सकता है। सिडनी में कल तेज धूप खिली रहेगी। यहाँ अधिकतम तापमान 20 डिग्री जबकि न्यूनतम 8 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। ब्रिस्बेन में भी कल धूप ही धूप रहेगी। यहाँ अधिकतम तापमान 23 डिग्री जबकि न्यूनतम 10 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। डार्विन में कल तेज धूप के आसार हैं। अधिकतम तापमान 31 जबकि न्यूनतम 22 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। भारत की राजधानी नई दिल्ली में कल बादलों की आवाजाही लगी रहेगी। दिल्ली का अधिकतम तापमान 36 डिग्री जबकि न्यूनतम 27 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। समाचार में आज बस इतना ही। नमस्कार।
लाइक करें, शेयर करें या कमेंट करें। SBS हिंदी को फेसबुक पर फॉलो करें।